बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर खेती की देखभाल करते रहते हैं, यहाँ तक कि फसल तैयार हो जाती है और इसको काट कर आप साल भर तक मजे से खाते रहते हैं। आप जमीन में जिस चीज की काश करेंगे इसी की फसल तैयार होगी। गेहूं बोएंगे तो गेहूं गेहूं पैदा होंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, कुछ ना बोएंगे तो कुछ ना पैदा होगा। हल चलाने और बीज बोने और पानी देने और खेती की रखवाली करने में जो जो गलतियां और कोताहियां आपसे होंगी, उन सब का बुरा असर आपको फसल काटने के मौके पर मालूम होगा। और अगर आपने ये सब काम अच्छी तरह किए हैं तो इनका फायदा भी आप फसल ही काटने के वक्त देखेंगे। बिल्कुल यही हाल दुनिया और आखिरत का है। दुनिया एक खेती है, इस खेती में आदमी को इसलिए भेजा गया है कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से अपने लिए फसल तैयार करे। पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए आदमी को इस काम की मोहलत दी गई है। इस मोहलत में जैसी फसल आदमी ने तैयार की है वैसी ही फसल वो मौत के बाद दूसरी जिंदगी में काटेगा, और फिर जो फसल वो काटेगा इसी पर आखिरत की जिंदगी में उसका गुजर बसर होगा। अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में अच्छे फल बोए हैं और उनको खूब पानी दिया है और उनकी खूब रखवाली की है, तो आखिरत की जिंदगी में जब वो कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक सरसब और शादाब बाग की सूरत में तैयार पाएगा, और उसे अपनी इस दूसरी जिंदगी में फिर कोई मेहनत न करनी पड़ेगी। बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग उसने लगाया था इसी बाग के फलों पर आराम से जिंदगी बसर करेगा। इसी चीज का नाम जन्नत है और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है। इसके मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की जिंदगी में कांटे और कड़वे कसीले जहरीले फल बोता रहा है, इसको आखिरत की जिंदगी में इन्हीं फलों की फसल तैयार मिलेगी। वहां फिर इसको दोबारा इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपनी इस हिमाकत की तलाफी कर सके और इस खराब फसल को जलाकर दूसरी अच्छी फसल तैयार कर सके। फिर तो इसको आखिरत की सारी जिंदगी इसी फसल पर बसर करनी होगी जिसे वो दुनिया में तैयार कर चुका है। जो काटे उसने बोए थे उन्हीं के बिस्तर पर उसे लेटना होगा, और जो कड़वे कसीले फल उसने लगाए थे वही उसको खाने पड़ेंगे। यही मतलब है आखिरत में नाकाम और नामुराद होने का। आखिरत की ये शरह जो मैंने बयान की है हदीस और कुरान से भी यही शरह साबित है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत की जिंदगी में इंसान का नामुराद या बामुराद होना और इसके अंजाम का अच्छा या बुरा होना दरअसल नतीजा है दुनिया की जिंदगी में इसके इल्म और अमल के सही या गलत होने का। काफिर और मुसलमान के अंजाम में फर्क क्यों? ये बात जब आपने समझ ली तो साथ ये बात भी खुद ब खुद समझ में आ जाती है कि मुसलमान और काफिर का अंजाम का फर्क यूं ही बिलावजह नहीं हो जाता। दरअसल अंजाम का फर्क आगाज ही के फर्क का नतीजा है। जब तक दुनिया में मुसलमान और काफिर के इल्म और अमल के दरमियान फर्क न होगा आखिरत में भी इन दोनों के अंजाम के दरमियान फर्क नहीं हो सकता। ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि दुनिया में एक शख्स का इल्म और अमल वही हो जो काफिर का इल्म और अमल है, फिर आखिरत में वो इस अंजाम से बच जाए जो काफिर का अंजाम होता है। कलमे का मकसद इल्म और अमल की दुरुस्ती। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि कलमा पढ़ने का मकसद क्या है। पहले आपने इसका जवाब ये दिया था कि कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि काफिर के अंजाम और मुसलमान के अंजाम में फ़र्क हो। अब अंजाम और आखिरत की जो तशरीह आपने सुनी है, इसके बाद आपको अपने जवाब पर भी गौर करना होगा। अब आपको ये कहना पड़ेगा कि कलमा पढ़ने का मकसद दुनिया में इंसान के इल्म और अमल को दुरुस्त करना है ताकि आखिरत में इसका अंजाम दुरुस्त हो। ये कलमा इंसान को दुनिया में वो बाग लगाना सिखाता है जिसके फल आखिरत में इसको तोड़ने हैं। अगर आदमी इस कलमे को नहीं मानता तो इसको बाग लगाने का तरीका ही मालूम नहीं हो सकता। फिर वो बाग लगाएगा किस तरह और आखिरत में फल किस चीज के तोड़ेगा? और अगर आदमी इस कलमे को जबान से पढ़ लेता है मगर इसका इल्म भी वही रहता है जो ना पढ़ने वाले का इल्म है, और इसका अमल भी वैसा ही रहता है जैसे काफिर का अमल था, तो आपकी अकल खुद कह देगी कि ऐसा कलमा पढ़ने से कुछ हासिल नहीं, कोई वजह नहीं कि ऐसे शख्स का अंजाम काफिर के अंजाम से मुख्तलिफ हो। जबान से कलमा पढ़कर इसने खुदा पर कोई एहसान नहीं किया है कि बाग लगाने के तरीके भी वो ना सीखे, बाग लगाए भी ये नहीं, सारी उम्र काटे ही बोता रहे और फिर भी आखिरत में इसको फलों से लदा हुआ लहलाता हुआ बाग मिल जाए। जैसा कि मैं पहले कई मिसालें देकर बयान कर चुका हूँ, जिस काम के करने और ना करने का नतीजा एक हो वो काम फजूल और बेमाने हैं। जिस दवा के पीने के बाद भी बीमारी का वही हाल रहे जो पीने से पहले था, वो दवा हकीकत में दवा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर कलमा पढ़ने वाले आदमी का इल्म और अमल भी वही का वही रहे जो कलमा ना पढ़ने वाले का होता है, तो ऐसा कलमा पढ़ना महज बेमाने है। जब दुनिया में काफिर और मुस्लिम की जिंदगी में फर्क ना हो तो आखिरत में इसके अंजाम में फर्क कैसे हो सकता है? कलमे तैयबा कौन सा इल्म सिखाता है? अब ये सवाल सामने आता है कि वो कौन सा इल्म है जो कलमे तैयबा इंसान को सिखाता है, और इस इल्म को सीखने के बाद मुसलमान के अमल और काफिर के अमल में क्या फर्क हो जाता है? पहली चीज, अल्लाह की बंदगी। देखिए, पहली बात जो इस कलमे से आपको मालूम होती है वो ये है कि आप अल्लाह के बंदे हैं और किसी के बंदे नहीं हैं। ये बात जब आपको मालूम हो गई तो खुद ब खुद आपको ये बात भी मालूम हो गई कि आप जिसके बंदे हैं, दुनिया में आपको इसी की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना चाहिए, क्योंकि इसकी मर्ज़ी के खिलाफ अगर अगर चलेंगे तो ये अपने मालिक से बगावत होगी। नंबर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। इस इल्म के बाद दूसरा इल्म आपको कलमे से ये हासिल होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह के रसूल हैं। ये बात जब आपको मालूम हो गई तो इसके साथ ही ये बात भी आपको खुद ब खुद मालूम हो गई कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया की खेती में कांटों और जहरीले फलों के बजाय फूलों और मीठे फलों का बाग लगाना जिस तरह सिखाया है, इसी तरह आपको बाग लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके की पैरवी करेंगे तो आखिरत में आपको अच्छी फसल मिलेगी, और अगर इसके खिलाफ अमल करेंगे तो दुनिया में कांटे बोएंगे और आखिरत में कांटे ही पाएंगे। इल्म के मुताबिक अमल भी हो। ये इल्म हासिल होने के बाद लाजिम है कि आपका अमल भी इसके मुताबिक हो। अगर आपको यकीन है कि एक दिन मरना है और मरने के बाद फिर एक दूसरी जिंदगी है, और उस जिंदगी में आपको इसी फसल पर गुजर करना होगा जिसे आप इस जिंदगी में तैयार करके जाएंगे, तो फिर ये नामुमकिन है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका इख्तियार कर सकें। दुनिया में आप खेती बाड़ी क्यों करते हैं? इसलिए कि आपको यकीन है कि अगर खेती बाड़ी ना की गई तो गल्ला पैदा ना होगा, और गल्ला ना पैदा हुआ तो भूखे मर जाएंगे। अगर आपको इस बात का ये यकीन ना होता और आप समझते कि खेती बाड़ी के बगैर ही गल्ला पैदा हो जाएगा या गल्ले के बगैर भी आप भूख से बच जाएंगे, तो हरगिज आप खेती बाड़ी में ये मेहनत ना करते। बस इसी पर अपने हाल को भी कयास कर लीजिए। जो शख्स जबान से ये कहता है कि मैं खुदा को अपना मालिक और रसूल पाक को खुदा का रसूल मानता हूँ और आखिरत की जिंदगी को भी मानता हूँ, मगर अमल इसका कुरान की तालीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, इसके मुताबिक मुतालिक ये समझ लीजिए कि दरहकीकत इसका ईमान कमजोर है। उसको जैसा यकीन अपनी खेती में काश ना करने के बुरे अंजाम का है, अगर वैसे ही यकीन आखिरत की फसल तैयार ना करने के बुरे अंजाम का भी हो तो वो कभी इस काम में गफलत ना करेगा। कोई शख्स जानबूझकर अपने हक में कांटे नहीं बोता, कांटे वही बोता है जिसे ये यकीन नहीं होता कि जो चीज बो रहा है इससे कांटे पैदा होंगे और वो कांटे इसको तकलीफ देंगे। आप जानबूझकर अपने हाथ में आग का अंगारा नहीं उठाते क्योंकि आपको यकीन है कि ये जला देगा, मगर एक बच्चा आग में हाथ डाल देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम नहीं है कि इसका अंजाम क्या है।